एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और दीदी उसी वर्ष ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे आए। उस समय आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, सो आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की 72 में और उसके बाद आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं अर्थ समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर अपनी अमूल्य सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं करते रहे। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको बहुत सुंदर गिफ्ट दी वहां पर बैठने की और लगातार 17 वर्षों तक वहां पर रहकर आपने वहां का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि सुचारू रूप से चलाया। और वर्ष 2010-11 के आसपास जब नीचे शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, बाबा ने आपको वहां बिठाया, तो वर्तमान में शांतिवन में स्थायी रूप से रहते हुए आप हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में अपनी सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राज्यों की प्रशिक्षिका है, SML ट्रेनर है, भट्टी की भी प्रशिक्षिका है और साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्री विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसलिए पूरे भारत भर में आप भ्रमण करते रहते हैं, कहीं शिविर कराने के लिए, कहीं भट्टी कराने के लिए और कहीं SML की ट्रेनिंग, तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स आदि कराने के लिए। इसके साथ साथ 1985 में आपने भारत एकता युवा पद यात्रा में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी का प्रदर्शन किया और बाद में 1996 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के द्वारा आयोजित कार रैली में भी विशेष सेवाएं दी। विदेश भ्रमण भी किया है और बाबा की मूल्यों का बहुत अच्छा आप चिंतन भी करते हैं और बाबा के एक एक महावाक्य की गहराई में उतरकर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारते हैं और पूरे ब्राह्मण परिवार को भी उसका लाभ देते हैं। तो आज की मुरली में आज्ञाकारी वफादार की बात आई थी, तो आज इसी को हमने विषय के रूप में चुना है, आज्ञाकारी वफादार और फरमान बरदार। तो सुनते हैं दीदी से, दीदी के अनुभव से इनका अर्थ क्या होता है। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बाबा के बेहद घर में विशेष अपना मूल घर पांडव भवन, जहां प्यारे बाबा मम्मा दादियों ने तपस्या की, ऐसी तपोभूमि में सभी तपस्या के लिए आए हैं। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, मधुबन के कण कण में बाबा की याद समाई हुई है। यहाँ हम नेचुरल इजी योगी बन सकते हैं, हमें मेहनत नहीं लगेगी। बाकी हिसार तो मैंने देखा, हर कैंपस में मैं देखती हूँ। मनमोहिनी गए तो वहां भी हिसार था एक टाइम, आनंद सरोवर गए तो वहां भी, मान सरोवर गए वहां भी, शांतिवन में भी, यहां भी हिसार का बड़ा परिवार है ना, हाँ? तो बाबा के घर में रिफ्रेश होने आते ही रहते हैं। आप सभी तो है ही बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, आपको क्या क्लास कराना है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चे हैं। जब ज्ञान में नहीं थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम बच्चे आपस में ऐसा खेल करते थे, पूछते थे एक दूसरे से। उस समय छोटी बुद्धि के हिसाब से पूछते थे कि भगवान अगर आपको कहे कि इतनी मिर्ची खा जाओ तो तुम खा जाएगी, तो हम कहते थे हाँ भगवान कहेंगे तो हम जरूर खा जाएंगे। भगवान कहे कि मटका पानी पी जाएगी एक साथ, बोला हाँ हम पी जाएंगे, भगवान कहेंगे तो हम जरूर करेंगे। उस समय तो कौन भगवान है कुछ पता भी नहीं था, पर भारतवासियों के संस्कार में ये है, घर परिवार से संस्कार मिलते हैं कि भगवान के प्रति इतनी समर्पण मयता हो कि वो जो कहे वो हम करें। पर सचमुच भगवान जब आते हैं प्रैक्टिकल संगम युग में, ये सौभाग्य हमें मिलता है। हम सभी ने बाबा को पहचान लिया है। निराकार को पहचानना बहुत बड़ी बात है ना? और माध्यम भी बाबा साधारण लेते हैं। अगर माध्यम चमत्कारी हो तो लोग माध्यम में ही फंस जाएंगे, है ना? निराकार को पहचानने की कौन मेहनत करेगा? तो बाबा साधारण माध्यम का आधार लेते हैं ताकि विवेक से आत्मा निराकार को पहचाने, वो पहचान हम बच्चों को हुई है। बाबा कहते हैं ना, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो, वो भगवान को नहीं पहचान सके, पर बाबा के भोले बच्चों ने पहचान ली, है ना? ये भी कितनी वंडरफुल बात है कि जिन्होंने जीवन भर बड़ी विद्वत्ता की बातें की वो नहीं पहचान पाते हैं, पर हमें पहचाना, क्योंकि हम वो ही देवता घराने की आत्माएं हैं, तो हमें अपनी भी पहचान आ गई। बाबा ज्ञान सबको देता है, जो पहचान लेता है वो देवता घराने का है। और इसलिए हमें कोई धारणा भी मुश्किल नहीं लगी, बल्कि हम सबका अनुभव ये है कि जब से बाबा के बने तब से सही जीवन शुरू हुआ है ना? सच्चा जीवन तब बना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, प्राणी की प्रतीति उसकी वाणी से होती है। व्यक्ति कितना संस्कारी है वो उनकी वाणी से पता चलता है। भगवान की प्रतीति भी भगवान के ज्ञान से होती है। कि ऐसा सत्य ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। बाकी और सब विस्तार की बातें वो करते हैं, योग की लंबी चौड़ी विधि बताएंगे, साधन बताएंगे, क्रियाएं बताएंगे, भक्ति की पचासों प्रकार की साधन सामग्री बताते हैं, कितने क्रियाकांड बताते हैं, पर परमात्मा कौन है, हम कौन है, ये ड्रामा क्या है, वो मूल सत्य कोई भी नहीं बताता, ये बाबा ही आकर बताते हैं। इसलिए भक्ति में कहते हैं भगवान आकर अगम निगम के भेद खोलते हैं, आलोक परलोक और आदि मध्य अंत के राज बाबा ने आकर बताए। 63 जन्म भक्ति में क्यों भटके, सत्य नहीं मिला ना, सत्य ज्ञान नहीं मिला, इसलिए तो भक्ति में भटके ना, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरुजी से दूसरे गुरुजी में, इतना क्यों हम ढूंढते रहे? क्योंकि आत्मा को जब तक सत्य नहीं मिलता है, संतुष्टता नहीं होती। जैसे ही सत्य मिला, भटकना बंद। अब उस सत्य को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 63 जन्म सत्य पाने की मेहनत, हर एक ने कोई न कोई रूप में भक्ति तो की है ना, तभी बाबा मिला है। इस जन्म में भी कईयों ने की होगी, तो इतनी मेहनत क्यों की? आखिर भगवान कौन है? उसका दर्शन करें, मुक्ति को पाए, पापों से छूटे। अब भगवान मिल चुके हैं, मिल चुके हैं ना सबको, किस किस को निश्चय है? सबको निश्चय है। अब भगवान मिल चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ये भट्टी में देखना है। तपस्या के लिए आए हैं ना, खुद के लिए समय निकाल करके आए। यहां भाइयों को नौकरी धंधे पर नहीं जाना है, माताओं को खाना बनाने की चिंता नहीं, बाबा सारे प्रबंध तैयार देते हैं कि तपस्या करो। तो साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखना है कि अब जब सत्य मिल चुका है तो अब हम क्या कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं विज्ञान नहीं था तो विकारों में डुबके लगाए, विकर्म हुए, पर बाबा ने ड्रामा कह के फुल पॉइंट लगाए। बाबा ने हमें डांटा नहीं, क्यों पाप किए, क्यों भूले की, नहीं, ड्रामा, ज्ञान ही नहीं था, तो बाबा ने माफ कर दिया कि फुल पॉइंट। पर बाबा कहते हैं अब गफलत नहीं कर, अब गफलत नहीं करना। बाबा ने सारे सत्य हमें समझाए हैं, रोज समझाते हैं, नए नए तरीके से समझाते हैं। पता है ना सबको, 1936 से 1969, 33 वर्ष बाबा ने साकार ब्रह्मा के द्वारा सारे ज्ञान के मूल सत्य हमें समझाए, जो रोज साकार मुरली में हम सुनते। इतना चिंतन करके विस्तार से बाबा ने बताया और प्रैक्टिकल जीवन की सारी मैनर्स बाबा ने सिखाई। कितनी छोटी छोटी बातें बाबा सिखाते हैं हमें। परम पिता ने और आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने, नंबर वन आत्मा ने चिंतन करके हमें बताया। भले इन आंखों से ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, पर रोज मुरली में बाबा दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं ना? क्योंकि बाबा ने क्या सोचा, क्या चिंतन किया, क्या कहा और क्या किया, वही तो मुरली में बाबा बताते। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बाबा को नहीं देखा। हमने ज्ञान मुरली में रोज बाबा को हम देखते। 1969 से 2017 दिसंबर तक लगभग 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली। कौन कौन मिले हैं अव्यक्त बाप दादा से? बहुत सारे भाई बहन। इन आंखों से देखा है ना बाबा की लाइट माइट, बाबा का ज्ञान प्यार, कितना हिम्मत उमंग उत्साह बाबा भरते रहे। अपनी संपूर्णता की स्टेज से चलाई हुई अव्यक्त मुरलियों में संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन बाबा ने हमें दिया। भल बाद में भाई बहने जो आए हैं उनके लिए भी वो खजाना उपलब्ध है। वो सारी मुरलियां किताब के रूप में भी हैं, ऑनलाइन भी है। अगर एक पुरुषार्थी को संपूर्ण बनना है, पूरा मार्गदर्शन है मुरली में। तो सत्य मिल चुका है, अब हमें कुछ भी खोजना नहीं है। अब हमारा काम है जो बाबा कहते हैं वो मुझे जीवन में धारण करना। भक्ति में सही ज्ञान नहीं था, सच्चा गुरु नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इच्छा थी, मेहनत भी करते थे, पर देखो सत्य नहीं है तो उतरते ही गए, तमो प्रधान बनते ही गए। अब सत्य गुरु मिल चुका है, वहां तो ऐसे ही बोलते थे ना, सत्वचन महाराज, सत्वचन महाराज, जबकि सत्वचन तो थे ही नहीं। सत्वचन तो अब हम सुन रहे, अब हमें सतगुरु मिला है, सच्चा ज्ञान मिला है, और ये समय चढ़ती कला है, ये समय चढ़ती कला है। अब अपने आप को देखो, हमारी तीव्र इच्छा है बाबा जो कहे वो मुझे कर, विल है ये चेक कर। अब चाहिए तीव्र इच्छा, बाबा जो श्रीमत देते हैं वो मुझे धारण करनी है। अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा अपना कोई विचार नहीं है। टोटल बुद्धि समर्पण। अब हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें निश्चय है बाबा जो कहेगा सत्य कहेगा। लोग कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि सारे ट्रुथ बाबा आकर बताते हैं। बाबा जो कहता है सत्य कहता, बाबा जो कहेगा उसमें हमारा कल्याण है, ये हमें विश्वास है। सत्य ही शिव है, कहते हैं ना, सत्य ही कल्याणकारी। भल हमें कई बार लगेगा बाबा तो कहते हैं, पर बाबा को क्या पता, हम गृहस्थी हैं, हमें पता है ना कितनी बातें आती, ऐसे बातें करते हैं ना बाबा से कई बार। हाँ, बाबा गृहस्थी बने तो पता चले परंतु नहीं, बाबा हमें जानता है, बाबा हमें देख कर ही कह रहा है। बाबा जानते हैं कलयुग अंत में आए हैं, तमो प्रधान बन चुके हैं, बहुत हिसाब किताब वाली आत्माएं, बाबा जानते हैं ना, थकी हुई है। पर हम कर सकते हैं तभी तो बाबा कहते, हम कर न सके ऐसी बात बाबा क्यों कहेगा। बाबा अपने शब्द व्यर्थ क्यों करेगा। हम कर सके ऐसी ही बातें बाबा कहते, इसलिए इस निश्चय और समझदारी से अगर हम बाबा के मधुर महावाक्यों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसे धारण करना, आचरण में लाना कोई मुश्किल नहीं। हमें अपना लक्ष्य मजबूत बनाना है। ना कोई धारणा मुश्किल है, ना कोई ज्ञान की बात मुश्किल है। बाबा कहते हैं ना कि मैं आया ही हूं तुम्हें मदद करने, सहयोग देने। भगवान भक्तों को मदद करते हैं, ऐसे कहानियां सुनी है ना, हाँ सुनी है ना भक्ति में, कि जब जब भक्तों पर विपदा आई भगवान ने कैसे मदद की। हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, सपूत हैं। बाबा हमें कितनी मदद करते हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर कर्म की बाबा ने जो आज्ञा हमें दी है, समझ दी है, हमें दृढ़ता से करनी ही है। शुरू में मुश्किल लगेगा, अमृत वेले उठना मुश्किल लगता है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर गलत रीति से हैबिचेटेड बन गए ना, आदत पड़ गई 7 बजे उठने की, 6 बजे उठने की, 8 बजे उठने की। जब परिवर्तन करेंगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि मन भी आदती हो गया, शरीर भी आदती हो गया। पर कहते हैं ना कि आहार और निंद्रा, ये दो चीज ऐसी है, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहे कम कर सकते हैं। भक्ति में कभी कभी सारी सारी रात जागते थे, करते थे ना जागरण नवरात्रि में, शिवरात्रि में उपवास करते हैं वो, कभी कभी वार त्योहार पर। बाबा ने हमें लाइफ लॉन्ग धारणाएं दी, कभी कभी नहीं। निंद्रा जीत माना सोना ही नहीं, ऐसा नहीं है। निंद्रा जीत माना टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना, उसको निंद्रा जीत के। हम योगियों के लिए बाबा कहते हैं रात को 10-10:30 तक सो जाओ, अमृत वेले उठ जाओ। वो प्रभु मिलन का समय है, बाबा से पर्सनल दिल की हर बात अमृत वेले करनी। वो समय बाबा का हम बच्चों के लिए है 3 से 5 बजे, 2 से 5 अमृत वेला कहा जाता है, उसमें कोई 1 घंटा जरूर उठना, 4 से 5 चलो कम से कम। बाबा के 5 बजे के बाद भक्तों की लाइन शुरू हो जाती, फिर बच्चों का नंबर नहीं लगेगा। भक्तों की भीड़ तो पता है ना, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे व्यक्तिगत मिलन का समय 2 से 5, इसलिए रात को टाइम से सो जाएं, बाकी सब प्रलोभन छोड़ना पड़े। आपस में बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब स्टॉप। 10, 10:30 माना बस। तो आपको अमृत वेला मुश्किल नहीं लगेगा। जिनको दिन में आराम करना नहीं मिलता है, नौकरी है, धंधे हैं, उनको 10 बजे सोना चाहिए, पर अमृत वेला मुझे जरूर उठना है। दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से होती है, इसलिए वो अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अगर दिन की शुरुआत ही अवज्ञा से, भाई उठे ही नहीं, सोए रहे, तो मजा नहीं आएगा। योगी जीवन का एहसास तभी होता है जब अमृत वेला योग करते हैं। दृढ़ता रखेंगे तो मन भी सेट हो जाएगा, बॉडी भी सेट हो जाएगी, आप उठ सकेंगे। हम 16 वर्ष की आयु में समर्पित हुए। अमृत वेले उठने की आदत नहीं थी, परंतु लक्ष्य भी था कि यज्ञ में रहना है तो यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार रहे। हम अमृत वेला उठते थे, बहुत सिर दर्द होता था, बड़ी तकलीफ होती थी, नींद आती थी, झुटके आते थे, माथा भारी हो जाता था। पर धारणा भी ये कि यज्ञ में रहना है तो दिनचर्या अनुसार ही चलना है, इसलिए उठते भी थे। शुरू में हम 70 में बाबा से मिलने आए, हिस्ट्री हॉल था बस, 50-100 भाई बहने होते थे, 100 भाई बहने, 150 भाई बहने हो गए, माना न्यूज आ जाता था मधुबन फुल हो गया है, अब कोई नहीं आएगा। बाबा आराम से मिलते थे, तो हमने सोचा बाबा से ही पूछे, बाबा ही अगर कह दे कि बच्ची सिर दर्द होता है तो कोई बात नहीं, नहीं उठना तो अपना काम सहज हो जाएगा। तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा अमृत वेला बड़ा तकलीफ होती है, बहुत सिर दर्द होता है, नींद आती है, मुझे मजा नहीं आता है। तो बाबा ने मुझे 5 बातें बताई। सबसे पहली बात बाबा ने मुझे क्या कहा कि बच्ची कुछ भी हो जाए अमृत वेला उठना बंद नहीं कर। उठती रहेगी तो निंद्रा जीत तो बन जाएगी, नहीं तो अंत में योग भी नहीं लगेगा और निंद्रा भी परेशान करेगी, है ना। जब नींद आती है उस समय सोने को न मिले तो कितनी परेशानी होती है ना। उठती रहेगी तो निंद्रा जीत तो बन जाएगी। दूसरा बाबा ने मुझे कहा कि अगर बैठकर योग करने में सिरदर्द होता है, नींद आती है, तो चलते फिरते योग करो, झाड़ू लगाओ, अलमारी ठीक करो, मुरली पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो, पर सोना नहीं, चलते फिरते योग करो। तीसरी बात बाबा ने मुझे कही कि बच्ची सिर दर्द होता है, इसका मतलब दिमाग कमजोर है। जैसे कोई ऑर्गन कमजोर होता है ना, तो सिर दर्द होता है मीन्स कमजोर है। तुम एकाग्रता का अभ्यास नहीं करो, तुम बाबा से प्यार से रू रिहान करो, बाबा से बात करो प्यार से, एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर। चौथी बात बाबा ने मुझे कही कि जब रात को सो जाती हो तो निर्संकल्प होके सो जाओ। कई बार हम लेट जाते हैं पर लेटे लेटे बातें सोचते रहते, विचार चलते रहते, सेवा के विचार आते हैं। बाबा ने कहा निर्संकल्प होके सो जाओ, बाबा की याद में बस प्यार से सो जाओ। तो बाबा की याद में सोएगी, उठते ही बाबा याद आएगी। और मुझे बाबा ने ये भी कहा था कि बच्ची एक बूंद रोज बादाम का तेल लगा, अब हम तो सेंटर में आ गए थे, उस जमाने में सेंटर में कोई इतनी थोड़ी सुविधाएं थी, वो तो हमने नहीं किया और ना सोचा इसके बारे में, बाकी जो बाबा ने कहा वो मैंने सब कुछ किया। 5 वर्ष की मेहनत के बाद मेरा अमृत वेला सहज हुआ, आज मैं अच्छी तरह योग कर सकती हूँ, करा सकती। अगर उस समय मैंने छोड़ दिया होता तो वो धारणा नहीं बनती। दादी गुलजार कहते थे कि अमृत वेले की धारणा इतनी नाजुक है कि बरसों के अभ्यास के बाद वो शक्तिशाली बनती, और अगर एक हफ्ता भी गफलत किया तो वो आदत तुरंत टूट जाएगी। अमृत वेला हम योगियों की पहचान है। हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अमृत वेले जिंदा या मुर्दा कहां मिलने चाहिए, बाबा के कमरे में, खटिए में नहीं। आप घर में रहते हैं, कई बार पूरे परिवार ज्ञान में नहीं चलते हैं, कई तकलीफ होती है, पर मैं जानती हूं आप सबकी लगन इतनी होती है कि आपको योग का कमरा न मिले तो भी आप बाबा को प्यार से याद करते हैं। लगन चाहिए बस। इसलिए फाउंडेशन अमृत वेला, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक के हमारी दिनचर्या के हर कर्म के लिए बाबा ने हमें क्या बताया है हम जानते हैं, जानते हैं ना। लक्ष्य रखो हमें ऐसे चले। स्नान करते हैं तो क्या यार, पूरी मुरली है, अव्यक्त वाणी है, एक पढ़ना निकाल के पूरी दिनचर्या में क्या हमें स्मृति रखनी बाबा ने बताया। भोजन, देह भान भूलना भी है और देह को संभालना भी है ना, दोनों बातें अपोजिट है पर ये वास्तविक है। शरीर को संभालना भी है तो खाना भी है, और रस और स्वाद में डूबना भी नहीं। तो बाबा ने शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन हमें कहा। ये बहुत जरूरी धारणा है। खुद की लगन है, आप इसका कहीं भी जाएंगे पालन कर सके। बाबा के एक बच्चे ने बाबा को लिखा कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं, नहीं खाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, बाबा मैं क्या करूं। बाबा ने बच्चे को जवाब मुरली में ही दिया। बाबा ने कहा बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ही तो रोज बाबा समझाते हैं। रोज बाबा कौन सी मुरली चलाते, यही तो चलाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चा पूछ रहा है कि बाबा मैं क्या करूं। जरूर बच्चे को खाने की दिल है तभी तो पूछता है। अंदर सूक्ष्म में खाने की आकर्षण है तभी तो पूछते हैं। जब खुद दृढ़ है कोई भी पूछे। बाबा कहते हैं युक्ति से मुक्ति कर लो। भाई अभी खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है, नहीं खाना है, उपवास है, डॉक्टर ने मना किया है, कुछ भी। और एक बार जब जान जाएंगे ना लोग, फिर कोई आग्रह नहीं करे। फिर आपको खाने की दिल होगी ना तो भी लोग कहेंगे अरे इनको नहीं कहो ये नहीं खाएंगे। आपको अंदर होगा कि कुछ खा ले पर लोग कहेंगे कि भाई ये नहीं मानते हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं खाएंगे। लोग भी जानते हैं हमारे नियम क्या है और हमें लोगों का कहना करना है कि भगवान कहे वो करना है। बस भगवान क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है वही मुझे सोचना है। लोगों के कहने पर चले तब तो उतर गए, तमो प्रधान बन गए। अब भगवान कहे वही मुझे करना है। और बाबा ने तो कहा है ना खुद बनाओ, आप में कला भी आ जाएगी। घर में बनाएंगे स्वच्छता से, कम खर्च में पूरा परिवार खा लेगा। होटलों में जाके उनके किचन देखो तो पता चले कैसे होते हैं उनके ये तो बाबा का शुक्रिया हम सबको सेफ कर दिया। अन्न शुद्धि की धारणा कितनी हमें सलामत कर दिया। आज क्या क्या मिलावट बनावट होती है पता है ना सबको, दुनिया में एक चीज खाने जैसी नहीं, इतनी मिलावट बनावट होती है। और वाइब्रेशन की तो बात ही नहीं है, वो तो हर मन विकारी मन है दुनिया में। अन्न के द्वारा ही बुरी विद्याओं का प्रयोग होता है, ये भी आपको पता होगा। जो मैली विद्या है, बुरी विद्या है, तंत्र मंत्र का प्रयोग अन्न के द्वारा ही होता है। बाबा ने हमें कितना सेफ कर दिया। इसलिए बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में स्वीकार कर। बाबा हमें भोग में, ब्रह्मा भोजन में, टोली में सब कुछ खिलाते ही है ना? हाँ, कोई वंचित थोड़ी किया बाबा। और सब सीख जाते हैं, आराम से बना सकते हैं। घर से बाहर जाते हैं बाबा को बता के जाइए। एक मिनट, आधी मिनट लगता है। घर से बाहर जाते हैं, घर के बड़ों को बता के जाते हैं ना कि ऐसे ही जाते हैं, घर के बड़ों को बता के जाते हैं ना, वो सीखना है। आज की जनरेशन को भी सीखना है, अपने बड़े बुजुर्गों को बताना है। बाहर से आते हैं, समाचार बताइए। ऐसे बाबा को बता के जाइए, आकर बाबा को बताइए कि बाबा इस काम से गई थी, करके आई, थैंक यू बाबा, बताओ बाबा। बाबा से लाइव रिलेशन है कि ड्राई रिलेशन है? जीवंत संबंध चाहिए। बाबा मेरा सब कुछ है और बाबा को कुछ आप बताओ ही नहीं तो ऐसे थोड़ी चले। हर कर्म में बाबा, हर कर्म में बाबा। रात को सोते हैं बाबा को अपनी दिनचर्या बताओ, दिन भर का समाचार दो। गलत हुआ दोबारा नहीं करेंगे बताइए, दृढ़ता करें। बाबा को बता के मन खाली करके आराम से सो जाइए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुरली में भी तो आज्ञा आती है ना। बाबा जो समझाते हैं वो हर आज्ञा है हमारे लिए। याद के लिए तो बाबा कहते हैं मेरा फरमान है। याद बिगर आप पार नहीं होंगे, इसलिए बाबा ने इसको फरमान कहा। फरमान माना हुक्म, मानना ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। जैसे पवित्रता का कोई अल्टरनेट नहीं। बाबा कहते मार खाओ कुछ भी करो, भगवान को सबसे पहली मदद हमारी कौन सी चाहिए? पवित्रता। अगर कलयुग को सतयुग बनाना है तो पवित्रता की मदद चाहिए। आज्ञाकारी और फरमान बरदार, जो हुक्म बाबा का सिर माथे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी तो पता है ना सबको। बाबा गुरु का बुलावा काल का बुलावा कहते थे। आप काल को ना कर सकते हैं, नहीं ना, तो बाबा कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा, मानना ही है सिर मान। एक मनुष्य गुरु में बाबा को इतनी श्रद्धा थी, हमें तो कौन कह रहा है। साक्षात भगवान हमें समझाता है, तो मुझे मानना ही है। अपने आप सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, सेट हो जाता है। और वफादार, वफादार जो यज्ञ बाबा ने रचा है, हमें वफादार रहना है। यहां की बात वहां नहीं, वहां की बातें यहां नहीं। यज्ञ माना हम सभी, यज्ञ माना मकान थोड़ी, यज्ञ माना हम सभी। हमारे निमित्त है, हमें यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति वफादार रहना है। हमारी इच्छा अनुसार हो या ना हो, हमें वफादारी से चलना है। ना भगवान से बेवफाई करनी है, न भगवान के निमित्त जिम्मेवार बच्चों से हमें बेवफाई नहीं करनी। आज एक इंसान भी संबंध जोड़ता है, शादी करता है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं? वफादारी चाहते। थोड़ी भी बेवफाई हो इंसान को भी पसंद नहीं आता। मेरे होते दूसरे में तुम्हारी बुद्धि जाती है, नहीं चाहिए। हमने जीवन किससे जोड़ा है? भगवान से जोड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। ये सबसे बड़ी बेवफाई, भगवान के अलावा और कोई देहधारी में बुद्धि फंसाना, वो बेवफाई। भगवान के यज्ञ से वफादारी, भगवान के निमित्त बड़ों से वफादारी, भगवान के कार्य प्रति वफादारी। आज देश के प्रति वफादार है, देखो अपना जीवन कुर्बान करते हैं, देश की रक्षा में लोग लगे हुए हैं। हमें यज्ञ को संपन्न रखना है, अविभाजित अखंड रखना है और यज्ञ को सलामत रखना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इस पर और गहराई से आप चिंतन करना, और भी पॉइंट्स बुद्धि में आएगी आपको। ओम शांति।